ये देह नाशवान है, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाने के लिए बनी हुई है। इसके पहले कि ये नष्ट हो, हम इसका सदुपयोग कर लें, और जब ये नष्ट होने लगे तब भी हम समता भाव रख सकें, ये अभ्यास, इसी का नाम संलेखना है। जब देह के विसर्जन की अनिवार्यता हो तब हम देह को कैसे छोड़ें? यदि देह के प्रति आसक्ति है तो देह के छूटते समय तकलीफ होगी, और देह के प्रति अगर आसक्ति हम घटा ले तो फिर देह छूटती देख करके हम तकलीफ नहीं पाएंगे, बल्कि हम अपने परिणामों में समता रख करके देह को छोड़ेंगे। ये साधना पूरे जीवन भर कोई करता है तभी जीवन के अंत में वो इस तरह शांतिपूर्वक अपनी देह को छोड़ पाता है। आचार्य भगवंत इसके लिए हमें साधना की पद्धति बताते हैं। लेखन के मायने होता है क्रश करना, और सत के मायने होता है समीचीन रूप से। समीचीन रूप से क्रश करना यानी घटाना। किसको घटाना? अपनी कषायों को और अपने देह के प्रति आसक्ति को। इन दोनों को क्रम क्रम से समीचीन रूप से, अर्थात जबरदस्ती नहीं, शांतिपूर्वक, इस प्रक्रिया को संलेखना कहते हैं। इसी का दूसरा नाम समाधि मरण भी है। आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीन सब संसारी जीवों को लगी हैं। जहां इन तीनों का शमन हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। आधि मानसिक रोग का नाम है, व्याधि शारीरिक रोग का नाम है, और उपाधि ये यश ख्याति का रोग है। संसार में मुझे यश ख्याति पद और प्रतिष्ठा मिले, ये भी एक रोग है। ये तीनों तरह की विकृति, ये तीनों तरह की विषमताओं से बच करके और जो परिणामों में समता भाव आता है वो समाधि मरण कहलाता है। इसकी तीन प्रक्रियाएं आचार्य भगवंतों ने बताई हैं। पंचम काल में चूंकि हीन सहनन है इसलिए तीनों में से एक ही प्रक्रिया आज वर्तमान में की जा सकती है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोपगमन। ये तीन पद्धतियां हैं संलेखना की, जिसमें से इंगनी मरण और प्रायोपगमन ये दो प्रक्रियाएं वज्र प्रषभ नाराज सहनन जिसका होता है वही अंगीकार कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए भक्त प्रत्याख्यान, तीनों में अंतर क्या है? तीनों में कुछ बातें तो समान हैं और कुछ थोड़ा सा अंतर भी है। समानता यह है कि चाहे भक्त प्रत्याख्यान प्रक्रिया से समाधि लें, चाहे इंगनी मरण प्रक्रिया से समाधि लें, चाहे प्रायोपगमन प्रक्रिया से समाधि लें, संलेखना करें, तीनों में क्रम क्रम से आहार का परित्याग किया जाता है। भक्त का मतलब होता है आहार, प्रत्याख्यान का मतलब होता त्याग। तो भक्त प्रत्याख्यान यानी जिसमें क्रम क्रम से आहार का त्याग किया जाता है। आहार में भी चारों प्रकार के आहार में सबसे पहले ठोस आहार का, खाद्य पदार्थों का त्याग किया जाता है, रसों का परित्याग किया जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड और फिर निर्विकृति। इस तरह से ये साधना की पद्धति है। जिस भक्त प्रत्याख्यान में जैसे क्रम क्रम से आहार का त्याग किया जाता है और साथ में स्वयं भी अपने हाथ से अपनी सेवा टहल कर सकते, दूसरे से करा भी सकते, ये कहलाती है भक्त प्रत्याख्यान प्रक्रिया। करवट बदलनी है तो दूसरे की मदद से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं। सिर में दर्द हो रहा है तो अपने हाथ से सिर दबा सकते हैं, दूसरे से दबवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये भक्त प्रत्याख्यान कहलाएगी। लेकिन इंगनी मरण में विशेषता ये है कि तकलीफ होने पर, अपने सिर में दर्द होने पर अपने हाथ से जितना बने उतना दबा सकते, दूसरे से सेवा नहीं करवाएंगे, वो इंगनी मरण है। करवट बदल ली है तो जब तक शक्ति है करवट बदलने की तो बदलो, लेकिन दूसरे की मदद से करवट नहीं बदल सकते। आहार के लिए खड़े होने की जब तक सामर्थ्य है तब तक आहार के लिए खड़े हो, दूसरे का सहारा लेके खड़े नहीं हो सकते कि खड़े कर दो। भक्त प्रत्याख्यान में ऐसा कर सकते हैं कि हार के लिए अंजलि बांध के खड़े नहीं हुआ जा रहा, तो दो लोग मदद करके खड़े कर देंगे तो और पकड़े रहेंगे और फिर आप आहार कर लेंगे, ये भक्त प्रत्याख्यान वाला कर सकता है। लेकिन इंगनी मरण जिसने समाधि ले ली है वो तो जब तक अपने हाथ से खड़े होते बनेगा तभी तक आहार लेगा, नहीं तो त्याग कर देगा। और प्रायोपगमन में तो ये है कि ना अपनी सेवा टहल अपने हाथ से करेंगे ना दूसरे से कराएंगे। मने करवट बदलने की इच्छा है तो करवट नहीं बदलेंगे, ना दूसरे से बदलवाएंगे ना खुद बदलेंगे। जिस करवट से लेट गए यानी लेट गए, जब तक मरण नहीं होगा तब तक, ये प्रायोपगमन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें तो कोई महामुनि ही इस प्रक्रिया को धारण करते हैं, और उन्हें अगर उपसर्ग पूर्वक कहीं किसी गड्ढे में भी गिरा दिया जाता है तो जिस स्थिति में गिरते हैं उसी में लेटे या कि उसी स्थिति में रहे आते हैं पूरे जीवन पर्यंत, कुछ भी नहीं, उसमें आहार इत्यादि का भी त्याग कर देते हैं। नहीं प्रायोपगमन। तो इस तरह ये समता पूर्वक अपने देह का परित्याग करने की प्रक्रियाएं हैं। असल में इसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा अपन विचार कर लें। क्यों ऐसा हम करना चाह रहे हैं, क्यों आहार का त्याग कर रहे हैं, क्यों हम दूसरे से सेवा नहीं कर रहे हैं करवा रहे हैं। सारी प्रक्रिया स्वाधीनता की है, क्योंकि सारा संसार पराधीनता से ही चलता है, चाहे इंद्रिय और मन की पराधीनता हो और चाहे अन्य किसी के ऊपर हम निर्भर हो। आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन ये दोनों आवश्यक हैं किसी भी साधक को अपनी साधना के द्वारा। जिसकी साधना जितनी दूसरे पर डिपेंड है वो उतनी साधना में कच्चा कहलाएगा। साधना तो वो है जिसमें हम स्वाधीन होते हैं, जिसमें हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। तो ये स्वाधीनता और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता सिखाने की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें ही राग द्वेष कम होते हैं। जितनी पराधीनता होगी उतना राग द्वेष का अवसर आएगा, हमने ऐसा सोचा था ऐसा नहीं किया, ले अब आया मन में विकल्प तो आया, ठीक है आपने संभाल लिया लेकिन विकल्प तो आ गया। और अगर आपके मन में इस तरह का कोई भाव ही नहीं होता कि जैसा करना वैसा करो तो उस विकल्प से बच जाते, संकल्प से बच जाते। इसलिए संलेखना वाले को कहते कि साधना ऐसी करो जिसमें कि पराधीन ना होना पड़े। भोजन की भी पराधीनता तो है ही, पराधीन मुनिवर की चर्या, सिर्फ एक ही चीज है जो पराधीन है, बाकी सब 24 घंटे स्वाधीनता है लेकिन चर्या पराधीन है। उस पराधीनता को छोड़ो, आखिरी समय वो पराधीनता रहेगी तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। इस वजह से ये आहार की प्रक्रिया पर कंट्रोल कराते हैं, साथ में अपने परिणामों को संभालते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि परिणाम संभालना आवश्यक है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए क्या करेगा वो, सबसे पहले क्या करेगा, आग बुझाने का उपाय करेगा या जो जो बच सकता वो बचाएगा। आग बुझाने की तो सबसे कहेगा कि एक आग बुझा दे वे, मगर सबसे यह नहीं कहेगा कि हमारी तिजोरी खोल के रुपया निकाल ले, तो हम ही निकाल लें। हैं? बताओ आप बताओ, जो जो कीमती सामान है उसे सबसे पहले बचाने दौड़ेगा। आग लगी है सो और लोग हैं सो पानी डालो भैया रे और बचाओ रे, चिल्लाता भी जाएगा लेकिन चिल्लाते चिल्लाते करेगा क्या, बचा लो जितना बच जाए बाहर फेंक दो फिर बाद में बुझाएंगे। ऐसे ही इस देह को छूटते जान करके हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है कि जय हमारी जय देह छूटी को बचा लो आहा, कौन सी चीज बचाऊं ने, भीतर रत्नत्रय रूप मेरा धर्म बचा रहे, देह तो बचे और न बचे मुझे इसकी चिंता नहीं। तो ये जो संलेखना और समाधि मरण की साधना है वो इसी बात की साधना है कि अपने परिणाम रत्नत्रय रूप चतुर्विद आराधना रूप बने रहें। ये देह तो एक ना एक दिन छूटनी ही है, बड़ा साहस का काम। इसमें लिखा कि बलवान को भी मरण करना पड़ता है, कमजोर को भी मरण करना पड़ता है। जब हर अवस्था में मरण है तो कमजोर की तरह क्यों मरो, बलवान की तरह मरो, ऐसा कहा। बलवान की तरह मरने का मतलब यह नहीं है कि कोई से रड़बे भिड़बे जाने, बलवान की तरह मरने का मतलब यह है कि भाई अपने परिणाम संभाल करके मरण को प्राप्त हो, अपनी राग द्वेष की कमजोरी को छोड़ दे। बलवान वो है जो जितना कम राग द्वेष करे। अपन तो जा सोचते हैं कि जो जितो गुस्सा हो ले वो तो बलवान है, जिसका जितना दबदबा हो वे वो तो बलवान है। ये भैया जिसकी जितनी विनय हो वे वो तो बलवान है, जिसके अंदर जितनी विनम्रता हो वो उतना बलवान है। गुस्सा करने वाला बलवान नहीं, क्षमा भाव जिसके भीतर है वो उतना बलवान है। अपने यहां तो परिभाषा ये समतावान बलवान है, विषमतावान बलवान नहीं है। तो इसी उद्देश्य के लिए और ये साधना कराते हैं, जीवन भर करना पड़े। ये तो अपन पिछले दिनों समझ चुके थे कि ऑल ऑफ सडन तुरंत के तुरंत निर्णय लेना बहुत कठिन है, साहस नहीं बनता। इसलिए अभ्यास और भावना दोनों चीजें, मुझे समाधि की भावना बनी रहे और उसका अभ्यास भी चलता रहे। अकेली भावना भावना से नहीं चलेगा काम, भावना तो बहुत है आपकी, अभ्यास है कि नहीं है, जीवन भर का अभ्यास चाहिए। भोजन में आसक्ति है तो बहुत मुश्किल है, और कषायवान बहुत है तो संलेख ना ले पाएगा। मंद कषाय होवे और भोजन इत्यादि में आसक्ति न होवे, देह में आसक्ति न होवे, देह की सुख सुविधाओं के साधन मिले तो ठीक है, न मिले तो ठीक है, दोनों स्थितियों में समता रखने की साधना होवे तो आखिरी समय और आसानी से देह को छोड़ सकेगा। इसलिए जीवन भर ये साधना कराई जाए। और सबसे छोटा काल 48 मिनट का है संलेखना का, और बड़े से बड़ा 12 बरस का काल है। संलेखना अपनी आयु का मोटा मोटा निर्धारण करके और 12 वर्ष पहले से ही संलेखना की तैयारी शुरू कर दी जाती है। नियम कर लेते हैं कि 12 वर्ष की मैं संलेखना धारण करता हूं, 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही वो देह का परित्याग हो जाता है। अभी किसी अपन ने सुना है दो महाराज वगैरह के बारे में भी, संलेखना 12 वर्ष की धारण करी और 12 वर्ष में पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मरण उपस्थित हो गया, मरण को प्राप्त हो। एक आचार्य श्रुतसागर आचार्य कल्प थे महाराज, हमें महावीर जी में किसी ने बताया था कि उनका तो और बिल्कुल निश्चित समय बता दिया था उन्होंने कि फलानी तारीख में फलाने दिन और 10:30 बजे, हाँ, और समय बता दिया और सबसे कह दिया कि जल्दी आहार को निकल जाओ। तो सब लोग 9:15 बजे आहार को निकल के और 10:10 पर सब जो जो संघ के लोग वापस आ गए, तो सबसे कहा कि ले चलो उस पेड़ के नीचे बिठाल दिया। 10 मिनट बाकी, पूछा कितने बज गए, कहते 10:20, कहते 10 मिनट और हैं, सबसे क्षमा याचना करता हूँ और अब मैं ध्यान में लीन होता हूँ। और बस 10 मिनट जो है ध्यान में लीन हुए, गर्दन थोड़ी सी झुकी, प्राण निकल गए, देह वहीं के वहीं पड़ी रही। भाई संलेखना इस तरह की प्रक्रिया है, जितनी आसानी से जितनी निर्लिप्तता रहेगी उतनी आसानी से देह का त्याग होगा। मैंने 4-5 जो संलेखनाएं देखी उनके संस्मरण भी मैं सुनाऊंगा, पर थोड़ा सा अपन पहले ये देख लें कि ये प्रक्रिया है कैसी। संस्मरण सुनने में तो लगेगा कि आसान है, कभी किसी संस्मरण में लगेगा कि कठिन भी है। हाथी ने भी संलेखना ली थी, उसका भी संस्मरण है, हाँ, लेकिन उद्देश्य क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए, इसकी अपन को तैयारी करनी है। अभ्यास कठिन नहीं है, अभ्यास सिर्फ समता भाव का है, अभ्यास सिर्फ निष्प्रहता का है, लोलुपी व्यक्ति नहीं कर सकता। जा चीत चाने बा चीत चाने जानी चाने बानी चाने जा कच्ची है जा फलानी ऐसी है जय ऐसी नैया नहीं तो अबे अबे कच्ची कच्चा है साधना नहीं जैसी है वैसी चुपचाप नमक कमती है तो कमती है ज्यादा है तो ज्यादा है हाँ नहीं है तो नहीं हर स्थिति में जो सहज रूप से ऐसा नहीं कि हमने सहन कर लो बाद में कही हाँ तो ने नमक बहुत हमने चुपचाप खा लो अरे तो फिर कचू नहीं फिर तो भाई होगी बात तो भाई नहीं उतनी ही प्रसन्नता से भोजन किया। एक महाराज ने आचार्य शिव सागर जी महाराज के समय की उनके संग में एक महाराज ने और अंतराय करके आ गए थे और बूढ़ी अम्मा उनके संगे आई कि महाराज कचू तो भाव नहीं है और महाराज ने आधो धो दो सो लो और चले आए और थोड़ी नाराज भी हो रहे अंतराय मान लो समझ गए महाराज की क्या बात है कहले कल का उपवास कर लो प्राश्चित दे दिया। अरे अब हमारा तो अंतराय भाव और प्राश्चित उल्टो उनको देना तो श्रावक हो कहते नहीं तुम ले लो। असल में उस दिन उन्होंने नियम दे के भेजा था कि पूरा भोजन करके आना लेकिन नीरस भोजन करना सो इनसे भाव ही नहीं है भाव नहीं है सो आ गए चुपचाप आधो धो दो खा के। ये साधना तब कहलाएगी जब जैसी भी स्थिति में हो और उतनी ही प्रसन्नता से हम उसे स्वीकार करें तब ये साधना संलेखना में की जाती है तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। जिन चीजों को छोड़ा है उनके प्रति आसक्ति रह जाएगी तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अंत समय में 56 प्रकार के भोजन की थालियां भर करके छपक के सामने से निकाली जाती हैं ऐसा कहते आचार्य जी। किसी चीज को खाने की आसक्ति रह गई हो तो बता दो उस आसक्ति को लेकर के मत मरना नहीं तो मरण बिगड़ जाए खा के देख लो ताकि मिट जाए उसके खाने की आकांक्षा। एक ब्रह्मचारी जी ने संलेखना ली थी एक साथ 4 संलेखनाएं हुई थी नैनागिर में सन 1982 उसमें एक संलेखना 10 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया सेव फल रख रखे थे सो उसका भी एक दिन त्याग कर दिया कि सेव फल का भी त्याग करते अब कर तो दिया छपक शब्द बोला था हमने छपक किसे कहते संलेखना के सम्मुख साधक को छपक कहते हैं ये अपन अपनी जानकारी में रखें। और एक वो होता है जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की छपना करके छपक श्रेणी चढ़ता उसको भी छपक कहते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना ये संलेखना के सम्मुख जो साधक है उसको छपक कहते हैं। तो वो छपक के मन में क्या भाव चल रहे हैं ये निर्यापक का काम है जानने का। निर्यापक किसे कहते हैं जिनके चरणों में संलेखना ली जाती है वे निर्यापक कहलाते हैं। एक एक साधु की संलेखना के लिए 48-48 निर्यापक होते हैं परिचारक होते हैं ऐसा लिखा तब संलेखना सफल होती है। कम से कम 2 परिचारक 2 निर्यापक तो होना ही चाहिए क्योंकि एक के बस की बात नहीं है वो अपने सब काम भी करे और सेवा भी करेगा तो कहती 2 तो चाहिए और अधिकतम 48 चाहिए संलेखना कराने तब जाकर के एक छपक के परिणाम संभाले जा सकते हैं परिणामों को परखा जा सकता है। अब देखिएगा उन्होंने संलेखना ले ली आचार्य महाराज की देखरेख में संलेखना हो रही हम लोग सब उनकी सेवा में हैं पर ऐसा समझ में आया कि उनके मन में अभी भी सेव फल खाने की आकांक्षा बनी हुई है। होता है पता नहीं किसका मन किस चीज में रुक जाएगा आदमी का मन मिर्ची खाने में रुक जाए तो उसी में अटक सकता है कोई जरूरी नहीं है। हाँ अपन को लगता है कि मिर्ची में कदर हुए वैसे ही तो चिपरी सी रहते खाते तब तो मन नहीं है लेकिन किसी को उसी की खाने की रुचि हो गए तो उसी में मन अटक जावे किस चीज में अटक जाए उनका अटक गया मन वो हम लोगों ने जान लिया। आचार्य महाराज को जाके कहा कि लगता है त्याग तो कर दिया लेकिन अभी खाने की इच्छा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं इच्छा है तो कल थाली में रख करके ले जाना और अगर इनकार करें तो कह देना कि महाराज ने आज आदेश कह दिया आप ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। दूसरे दिन सारी तैयारियां हुई और उसमें थाली में सेव फल भी रखे हुए। वो बड़े चकित कि अभी तक तो थाली में जो जो मैं लेता था वही आता था, आज तो मैं ये जो त्यागी हुए सेव फल है वो भी आए हैं। मेरे मन में जरूर आया था कि खा लेता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समझ गए हों इसलिए आज लाए हों, या जो भी हो मैंने तो त्याग कर दिया, ऐसा उनके मन में था। लेकिन भीतर भीतर ये भी था कि अगर परमिशन मिल जावे तो खा भी ले। हाँ, जैसे कि रास्ते से चले जा रहे हो वे और कोनो अच्छी चीज दिखा जावे तो हमारी थोड़ी है का करने अपन को, एक बार मन में आता का करने अपन को, फिर आजू बाजू देखा के को देख तो नहीं रहा उठा लेते हैं। अरे भैया ऐसे ही है मन का। तो अब जब वो इनकार करने लगे तो हम लोगों ने कहा कि आपकी इच्छा हो तो ले लें, आचार्य महाराज ने कह दिया अगर आप लेना चाहें तो ले लें। ले लिया उन्होंने, ले लिया आधा अधूरा ग्रास तो मैंने टुकड़ा भीतर गया, बाकी वो भी जो भीतर गया था सो इधर तक नहीं उतरा क्योंकि सामर्थ्य नहीं थी, लिक्विड चीजें जा पा रही थी उन साल्ट को, एक तो चबाने की भी नहीं थी और चबाया भी सो यहां से वहां से फंसू कर बन करके और वो निकल गया। भीतर तो कुछ गया नहीं विशेष, जितना हाथ में टुकड़ा था वो भी अत्यंत ग्लानि से भर गया मन कि मेरी आकांक्षा तो खाने की है लेकिन शरीर तो अब ग्रहण करने लायक नहीं रहा, धिक्कार है मुझे कि शरीर ग्रहण नहीं करता और मेरे मन में आसक्ति बनी हुई है और त्यागी हुई चीज को भी खाने का भाव कर लिया और खाई भी सो खा नहीं पाए। अरे और कुल्ला करके और कहने लगे कि मुझे आचार्य महाराज के पास इसी समय ले चले। आचार्य महाराज तो तैयार बैठे ही थे कि होगा यही, अगर वास्तव में छपक है सरलेखना ले रहा है तो अब विरक्त हो जाएगा और अब की विरक्तियां सही सच्ची विरक्ति हो। और आकर के कहा कि महाराज त्यागी हुई चीज ग्रहण करने का पहले प्रायश्चित दें और अब जो है आजीवन में समस्त वस्तुओं का त्याग करता हूं, अन्न जल का भी त्याग। और 3 दिन तक समस्त अन्न जल का त्याग करके शांति पूर्वक, क्योंकि अब तो विरक्त हो गए, अत्यंत विरक्ति हो गई कि शरीर ग्रहण नहीं कर रहा और मैं व्यर्थ ही खाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं छोड़ता हूं सब जल भी छोड़ता हूं। 3 दिन रहे और शांति पूर्वक अरण सिद्ध कहते हुए और अपने जीवन का जो सरलेखना का सबसे बड़ा दायित्व था उसको शांति पूर्वक पूर्ण किया। ये साधना अनिवार्य है, संलेखना में इतना ही अनिवार्य है कि आपके अपने परिणाम किस तरह आप संभालेंगे और आपके आसपास जो हैं वे उन सब में निमित्त बनते हैं परिणामों को संभालने। वो 48 जो मुनि महाराज एक एक शपक की संलेखना कराते उनके काम मालूम आपको, और 12 बरस तक जो ली जाती है वो, उन दोनों के बारे में भी अपन समझें। पर आज जो है वो दोनों चीजें ना समझ करके कल इन चीजों को समझेंगे। आज तो अपन एक हाथी भी संलेखना ले सकता है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले, फिर बाद में वर्णी जी ने किस तरह संलेखना ली थी, आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना का कैसा संस्मरण है, ये अपन कल बैठेंगे और फिर बात करें। आज का तो जाने का कोई है भी नहीं, आपको पहले ही मैंने बोल दिया था इसलिए। हाँ, नहीं तो आप सोच रहे हो कि अरे कल का मैंने तय हो गया क्या, कल जा रहे हैं, कल बोलेंगे, मतलब आज का तो फाइनल हो गया। अब तो एक 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 दिन लोग मतलब वैसे गिन से रहे हैं कि आज की कल की परसों, फोन आया है उनका, अब का कह दे में कि अबे हैं महाराज, कई लोग तो गुस्से में आ जाते कि क्यों आप बार बार पूछ रहे हो कि अभी हैं महाराज की हैं, हमारे यहाँ पर हैं अभी बहुत दिन रहेंगे, कई लोग ऐसा भी जवाब दे देते हैं। पर अब सबके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि कब, कल अपन इस चीज पर चर्चा करेंगे। आज तो जो अपने को एक मुख्य बात है कि एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं, एक त्रियंच भी इतना निष्प्रय हो सकता है, जीवन भर उसने भाव बनाए होंगे, अभ्यास किया होगा तो ही संभव है। पशु भी संलेखना ले सकता है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पंचम गुण स्थान व्रती हो जाता है। अपन तो हो सकता कि बिना व्रतों के अकेले श्रद्धा की वजह से चौथा गुण स्थान रहे सो बाल मरण कहलाएगा, लेकिन हाथी व्रत नियम के साथ संलेखना करता तो उसका बाल पंडित मरण कहलाता, बाल पंडित मरण, जो एक त्यागी व्रति का होता है। और ऐसा ही उदाहरण आया, वैसे तो त्रिलोक मंडल हाथी ने सरलेखना लेकर के ही मरण किया था, लेकिन वर्तमान में भी एक हाथी ने सरलेखना ली और उसकी प्रक्रिया देखिएगा। जिस शिकारी ने वो संस्मरण लिखा है वो पढ़कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाकई में आज भी ये ज्ञान था उसको। क्या हुआ, वो लिखता है अपने संस्मरण में कि मैं जंगल में और हाथियों के बीच पहुंचा, शिकारी था, सब समझता है हाथी का नेचर क्या होता है, उसके उसके पास कैसे जाया जाता, उससे दोस्ती कैसे की जाती है। हाथी को सबसे प्रिय होता है गन्ना, और वो हाँ सांटा खाने की उसकी बात प्रवृत्ति होती, जैसे बंदर को केले खिला दो मित्र हो जाए, हाथी को गन्ने मिल जाए आपका मित्र हो जाए। अब वो गन्ने लेकर के जाता है और देखता है कि और बाकी हाथी तो सहर स्वीकार करते हैं, एक हाथी जो है वो थोड़ा इनकार करता है। इसका ध्यान उस हाथी की तरफ चला गया कि इतनी प्रिय वस्तु की तरफ इनकार कर दे माने कुछ बात अलग है, या तो इसको कोई तकलीफ है या कि और कोई चीज है या तो नाराज है। तो उसने अब नाराज है अगर तो खतरा है, फिर पास में नहीं जाना चाहिए। तो उसने गन्ना फेंका, इसने देखा तक नहीं, एक दो पांच गन्ने तक उसके पास तक फेंके नहीं देखा, और पास पहुंचा क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की कि गन्ने फेंकने वाले की तरफ देखा हो कि कौन फेंक रहा है, समझदार बहुत होता है। तो पास गया और पास गया, अब की बार हाथ इतना रह गया कि गन्ना उसकी सूंड तक पहुंच सकता है, इतने पास पहुंच गया और उसने फेंका नहीं, हाथ से ऐसा किया तो उसने फौरन सूंड में लपेट करके खाना शुरू कर दिया। समझ में आया कि ये जमीन पर फेंके गए नहीं खाएगा, बात कुछ और है, हाथ से दे दिया तो खा लिया, एक खाया दूसरा खाया तीसरा खाया चौथा खाया पांचवा खाया, छठवां देने लगा तो सिर हिला दिया बस। अब ये रोज का क्रम बन गया। दो दिन के बाद देखा कि अगले दिन तो पांच लिए थे लेकिन उसके अगले दिन चार ही गन्ने लिए, फिर दो गन्ने लिए और एक दिन तो गन्ने खाने से इनकार कर दिया। अब इसको बड़ा आश्चर्य है, बड़ा इंटरेस्ट भी है कि क्या बात है, चुपचाप 24 घंटे उसी स्थान पर खड़ा रहता है, ना कोई पत्ते तोड़ता है ना कुछ पेड़ को क्षति पहुंचाता है, शांति से खड़ा रहता है वहीं पर। मैंने गन्ने दिए तो पहले दिन पांच दिए थे, दो चार पांच दिन के बाद क्रम चलता रहा, आज तो एक भी लेने से इनकार किया, बहुत मनाया, अब तो बहुत दोस्ती हो गई थी, बहुत मनाया प्रेम से, हाथ फेरा इनकार कर। ठीक है, मन में बहुत जिज्ञासा थी, 24 घंटे उसी के पास बना रहता था, पर अचानक जो है नींद लग जाने से और सो गया वो। जागा तो देखा कि हाथी वहां नहीं था, हाथी नहीं था तो जरा दुखी हुआ, इतना अच्छा मित्र था कहां चला गया, कोई ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया। पर देखा तो पैरों के निशान स्पष्ट बने हुए थे, 1.5 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में, और जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ था, जिसमें आधा डूब सकता था, वो आधा आधा डूबा हुआ था, उसमें खड़ा हुआ था पानी में। अब और चकित हुआ वहां जाकर के, फिर उसको आवाज दी, आवाज दी तो उसने सिर हिला करके उसकी उस आवाज का समर्थन किया, गन्ने देने की कोशिश की तो वो तो पहले इनकार कर चुका था, आज तो खाने का सवाल ही नहीं था, पानी में आधे पानी में डूबा हुआ खड़ा है ये उसके पास बैठा रहा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया कि इसके मन में क्या है। अगले दिन जब पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा उसी में पानी में, जिसको जल समाधि कहते हैं, पूरा पानी के अंदर शांति से बैठा, और उसने प्राण वहीं पर विसर्जित कर दिए, छोड़ दिए। तब उसने लिखा कि हाथी के अंदर भी इन सब चीजों के त्याग की क्या कोई बात थी, क्या उसको इतनी समझ थी क्या। अब इसकी और दूसरी बातों में नहीं जाना, नहीं तो अपन का मन बड़ा कच्चा है, पानी में बैठ गए तो सुसाइड तो नहीं कर लो, पानी में डूब के मर गए, दुनिया भर की बात, ये उपद्रव में ध्यान जल्दी चला जाता नहीं, सीधा सीधा उसने जो है, और किसी से भी अब ठंडी पट्टी आप तो लगवा सका, ठंडी पत्ती गर्म लग रहा उसको, अब वो कौन से ठंडी पत्ती की केवे, उसको दाह बड़ी होगी, उसको गर्मी लगी होगी, त्याग तो कर दिया उसने, कहा चलो जल में आसानी से इसमें खड़े हो जाओ, कोई विकल्प नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कोई मांगना नहीं, पानी भी नहीं पीना है, त्याग है उन सब चीजों का। इस तरह जीवन में निष्प्रहता पूर्वक भी प्राणों को छोड़ा जा सकता और आसक्ति पूर्वक भी प्राणों को छोड़ा जा सकता, ये इस तरह की प्रक्रिया है। एक चर्चा और छोटी सी आपसे, ताकि कल का थोड़ा सा आसान हो जाए, ये जो 12 बरस का समय है, उस 12 बरस के समय को अपन थोड़ा सा समझ ले, उसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग 12 बरस की संलेखना, जैसे कि मुझे मालूम पड़ जाए, मुझे थोड़ा मालूम पड़ गया अपने बारे में, 62 से 65 बरस की आयु है, तो 62 से 65 बरस की आयु है तो मेरा फर्ज है, मैं चाहूं अगर तो करते हैं तो एक बहुत बड़ी इस पार से उस पार जाने की यात्रा के लिए तैयारी नहीं होगी, तो वो कहते हैं कि इस तरह की तैयारी भी की जा सकती है। एक तो वो स्थिति है कि अब जिसका कोई प्रतिकार नहीं है और मरण बिल्कुल निकट आ गया है, तब ऑल ऑफ सडन और निर्णय ले लो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, सजग हैं, सावधान हैं अगर, तो हम लंबे समय तक इस प्रक्रिया को और कर सकते हैं। 4 बरस शुरू के विभिन्न प्रकार के काय क्लेश नाम का तप करना, काय क्लेश का मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं, शरीर पर आने वाले कष्टों को समता पूर्वक सहने की साधना करना। देखो अपने अनुकूल सब कछु होते रहे तो अपने परिणाम अच्छे रहते हैं, तो अपन सोचते हैं कि सब हम तो अच्छे हैं सब, लेकिन जब शरीर में कोई वेदना होवे और उस समय भी परिणाम उतने ही प्रसन्न और स्वस्थ बने रहें, तो समझना की साधना है। तो कह रहे हैं कि शरीर पर आने वाले कष्टों को सहन करने की आदत डालो, समता रखो, 4 साल तक यही अभ्यास करो, धूप में बैठो गर्मी के दिन में, देखें शरीर में होने वाली वेदना को सहन करने की सामर्थ्य है कि नहीं, नाना प्रकार से कायोत्सर्ग में, काय क्लेश में बहुत प्रकार के हैं कि एक ही स्थान पर जो है 12 घंटे 15 घंटे 25 घंटे बैठूंगा। हमारे योग सागर जी महाराज हैं और दीपावली के में तो मैंने उनको अक्सर देखा, मेरे 3 चतुर्मास में उनके साथ में हुए, तो हर दीपावली के एक दिन पहले से ही जो है 48 घंटे का 2 दिन का उपवास धारण करके, और ऐसे नहीं उपवास धारण कर लिया तो कुछ करते रहेंगे, नहीं, उपवास धारण किया तो उसी समय से बैठ गए और एक स्थान पर ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। अब कब उठेंगे, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों लाड़ू चढ़ाने के लिए उठेंगे, 13 निकल गई, 14 निकल गई, सोएंगे भी नहीं, वहीं पर बैठे बैठे टिक करके जितनी नींद लेना है तो ले ली, नहीं है तो ठीक। ये काय क्लेश, अब शरीर को ऐसे में कष्ट तो होगा थोड़ा सा, मलमूत्र की बाधा होगी, कुछ नहीं, शांत बैठो। इस तरह नाना प्रकार से 4 बरस तक यही साधना चलती है कि शरीर पर आने वाली विपत्तियों को कैसे सहन करेंगे, कष्ट सहिष्णुता की साधना है, कष्टों को सहन करने, क्यों, क्योंकि आखिरी समय कोई भी कष्ट आ सकता है और उस कष्ट को फिर सहन नहीं कर पाओगे, अभी पहले से ही कष्ट को सहन करने की आदत डाल लो। हम लोग शिखर जी की वंदना करने जब आचार्य महाराज के साथ में सन 1982 में इन्हीं दिसंबर के 2 दिसंबर को निकले थे कटनी से, और फिर यात्रा शुरू हुई थी यही सहडोल बुढ़ार अनूपपुर कोतमा और फिर वहां से चिरमिरी होते हुए कहां डाल्टनगंज हजारीबाग पहुंचते और अच्छी तेज जनवरी के 1-2 जनवरी के लगभग की बात है, कोहरा इतना घना था कि उतने आगे का कोई दिखता नहीं, और उसमें सुबह सुबह 15 किलोमीटर, शाम को तो 22-25 किलोमीटर रोज का काम था, और सुबह 15 किलोमीटर चलना था, हजारीबाग पहुंचना था। हजारीबाग में एक दिन पहले मीटिंग हुई कि कौन कौन कमंडल उठाएगा, कहती आ रहे हैं 11 महाराज, वहां तो बहुत कम पहुंचते थे उन दिनों में, तो ये तय हुआ मीटिंग में कि भैया कमंडल उठाने वाला कौन कौन रहेगा सबेरे से, वो भी को जगह होती ठंड में, निकल रहे को घर से, और हम लोग चले आ रहे हैं वहां से अपना अपना कमंडल पे। अब तो जो है हमें होते ऊपर से नीचे आउने हो तो 4 आदमी कमंडल को खड़े, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो कमंडल लेकर के 20-20 किलोमीटर तक अपने हाथ में लेकर के चलना, और चले आ रहे सब लोग इतनी कड़ाके की ठंड कि जब कमंडल हाथ से अब रखना है तो ये हाथ जो है दूसरे की मदद से खोलना पड़े, इतना ऐसा हो गया कि अब ये हाथ नहीं खोल रहे अपने हाथ से, क्योंकि ये भी अकड़ गया, ये भी अकड़ गए दोनों। फिर कमंडल निकाला, फिर बहुत देर तक कर आहार के लिए खड़े हुए तो अंजलि नहीं बंध रही, इस तरह की स्थिति। अब अगर वो आपने समता पूर्वक सहन कर ली तो बाद में क्या होता है, इन चीजों का स्मरण भी हमें बड़ा बल देता है कि अरे इतनी सी ठंड में डरा गए, जब देखो कितनी ठंड थी, जब ऐसे हाथ अकड़ गए थे और कुछ भी नहीं हुआ, मर थोड़ी जाए। असल में भाई ये लगता है कि जिन कष्टों में प्राण न निकल जावे और कछु नहीं, कष्ट तो सहन कर ले हैं मनो प्राण न निकल जाए, प्राणों का बड़ा डर। उसके लिए कह रहे कि भाई शरीर को ऐसा बना लो जिससे कि शरीर पर आने वाले कष्टों के बीच भी और समता भाव बने रहे। फिर कहते अगले चार वर्ष में विभिन्न प्रकार के रस परित्याग करके देख लो, छहों प्रकार से रसों का त्याग करके किसी भी रस के अभाव में मन में कोई विकल्प तो नहीं आता, सब प्रकार से रस छोड़ करके चार वर्ष तक यही साधना विभिन्न प्रकार के रस त्याग की। आठ वर्ष हो गए, कहते अब अगले दो वर्षों में सब चीजों का त्याग करके मात्र आचाम्ल और निर्विकृति, 50 ग्राम चावल 2 किलो पानी में उबाल ले, वो सब माड़ बन गो, उसमें थोड़ी सी इमली या की कोई खटाई डाल दी, पी लो आचाम्ल या की छाछ में बना करके, अकेली छाछ, रस तो छोड़ दिया इसलिए नमक नहीं पड़ेगा उसमें, कुछ नहीं डाल सकता उसमें, बस प्योर जो है छाछ पी लो, निर्विकृति नहीं, छाछ रस में नहीं आता, दूध रस में आता है, दही रस में आता है, घी रस में आता है, ये तीन गो रस है, छाछ तो निर्विकृति कहलाती, रस वगैरह उसमें से निकल गए, विकार निकल गया, वो निर्विकृति कहलाती। तो आचाम्ल और निर्विकृति 2 साल तक इसी पे चलेगा, कैसा प्यूरिफाई हो जाएगा पूरा शरीर एकदम, रोग शोक जितने भी होंगे सब निकल जाएंगे उसमें से, क्योंकि निर्विकृति है, विकार उत्पन्न होने की सामर्थ्य ही नहीं उसमें आचाम्ल और इसमें। 2 साल तक वही साधना, 10 वर्ष हो गए, अब कहते 1 वर्ष तक मात्र आचाम्ल, अब निर्विकृति भी छोड़ दी, मात्र आचाम्ल अल्प मात्रा में। अगले 6 महीने में फिर अब ज्यादा कठोर तप नहीं करना, अब 1 साल बाकी बचा है, तो 6 महीने मध्यम तप, शांति पूर्वक जितनी सामर्थ्य उतना कर लिया। लेकिन अब जैसे ही आखिरी 6 महीने पीक पॉइंट आ गया, अब आखिरी के 6 महीने में जितना हो सके उत्कृष्ट तप, 1 दिन आहार 2 दिन उपवास, 1 दिन आहार 3 दिन उपवास, 1 दिन आहार 4 दिन उपवास, 10 दिन उपवास, ताकि उन्हीं उपवास में ही चले जाओ, हाँ उत्कृष्ट तप। अब धीरे धीरे वाला काम नहीं, घिस घिस के नहीं, और तो एक इस पार की उस पार, तो 6 महीने आखिरी में कि अब 12 वर्ष पूरे होने वाले, आखिरी के 6 महीने में 1 बार आहार वही आचाम्ल, और आहार भी कुछ नहीं लेना, आचाम्ल 1 गिलास आचाम्ल लिया, और अब 4 दिन के लिए फुर्सत बैठे पंच गुरु चरण शरणा, और कोई नहीं है, पंच परमेश्वर जी का ध्यान और स्मरण। कोई व्यक्ति बिना पानी के भी विकल्प ना करे तो 90 दिन तक जी सकता है, और हड़बड़ी होवे तो 90 मिनट भी नहीं जी सकता, ये ध्यान रखना। साइंस का ये डिक्लेरेशन है कि कोई बिल्कुल समता पूर्वक रहे तो 90 दिन यानी 3 महीना तक बिना पानी के भी जीवन रह सकता, आयु की क्षति नहीं होगी, आयु शेष है अगर तो, मतलब ये नहीं समझे कोई कि इस तरह से पानी वानी छुड़वा करके बिल्कुल मारा ही रहेगा, मरता नहीं कोई छोड़ने से, अगर परिणाम अच्छे रहे तो प्राणों का घात नहीं होता, प्राणों का घात तो संक्रेश करने से होता भैया, आहार के छोड़ने अकेले से नहीं होता, आहार छूटने का जो विकल्प है, आहार छूटने का जो संक्लेश है कि आहार छोड़ दो कछु होने जाए, ये जो भय है उससे आयु कर्म की उदीर्णा होती है और मरण सहज हो जाता। तो इस तरह से और आचार्य भगवंतों ने साधना करने की प्रक्रिया बताई, इसके लिए 2 ही चीजें आवश्यक हैं, खूब थोड़ा साहस चाहिए और दृढ़ता चाहिए, साहस होगा तो ही हम निर्णय ले पाएंगे, और दृढ़ता होगी तो ही हम उस निर्णय को आगे तक बढ़ा पाएंगे। अपन फिर बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, ये प्रक्रिया अपने जीवन में अपन को सीखना चाहिए, जब तक अपनी अपने हाथ पैर चलते हैं तब तक अपने को इस साधना को करके ताकि जीवन के अंत में पराधीनता ना हो। हम देखते तो हैं जहां आहार करने जाते, हमारी अम्मा जी हूं आशीर्वाद दे दो, वे कह रहे हमारे उनको दे दो, वे कह रहे हमारे उनको, उनको देख करके कैसा लगने लगता, हमें कैसे लगने लगता कि भैया अपन की स्थिति ऐसी न होवे, ओके पहले ही अपनो काम अपन कर लो। जय स्थिति आ गई, पराधीनता हो गई, अब ने को उसने कछु कह सकत, ने को कछु मदद कर सकत, का कर सकत मदद, बाहर से आपको अच्छे कपड़ा लत्ता पहना दे, भोजन करवा दे, परिणाम तो नहीं समझ सकत, भीतर हाथ तो नहीं डाल सकत को के। आप बैठे हो 24 घंटे, अब को नहीं है तो अपने अपने काम में लगे हैं, जब समय आए सो तुम्हें देख जे, बाकी तो अपने अपने 24 घंटा तुम्हें को संभाल ले, कुर्सी बिछा दो तो कुर्सी बैठे, पलंग पे लिटा दो तो पलंग पे लेटे, अब अशक्त है ने उठ के होते जा सकत, ने जाने हैं सो बुलाओ। जय स्थिति ने बन पाए, जब पराधीनता बड़ी कष्टप्रद है, अशक्त ना हो पावे ये शरीर, उसके पहले ही मैं इस देह का विसर्जन कर दूं शांति पूर्वक, ये साधना जो है जो जीवन भर करेगा उसी को आखिरी समय और इसका लाभ मिलेगा। इसी भावना के साथ कि अपन अपने जीवन में ऐसी समता की साधना करें जिससे कि जीवन से विदा लेते समय भी और समता भाव बने रहें।
गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। शिक्षा व्रत बाकी रहा वो अपन पढ़ते हैं आज। दानम वैयाव्रत्यम 111। दानम वैयाव्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमग्रहाय विभवेन व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयाव्रत्यं यावन् यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् नौ पुण्यै प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारम्भाणां मार्यानामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम् स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतम् दानमल्पमतिमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफिलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप् उपकरणावाशयोश्च दानेन वैयाव्रत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरश्रात्। ठीक से नहीं पढ़ते, जल्दी से पढ़ लेते हैं। वैयाव्रत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरश्रा शीशेन वृषभसेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयाव्रत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवादिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचुन्यादाद्रतो नित्यम् अरहच्चरण सपरिया महानुभावं महात्मनामोदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुष्मेनैकेन राजगृहे हरितपिधान निधाने यनादरास्मरणमत्सरत्वानि यनादरास्मरणमत्सरत्वानि वैयाव्रत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते। इस तरह से ये 111 से लेके 121 सबसे ज्यादा श्लोक वैयाव्रत्ति के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखे हैं। वैयाव्रत में कितनी चीजें शामिल होंगी, अपन लोग सामान्य रूप से क्या सोचते हैं, महाराज के पास जाकर के उनके पैर वगैरह दबाना, भैया जाओ वैयाव्रत्ति करना है, हो गया फिनिश। लेकिन इसमें देखो कितने प्रकार से वैयाव्रत्ति की चर्चा करी है। कह रहे हैं दानम वैयाव्रत्यम, वास्तव में दान देना ही वैयाव्रत्ति है। लो दो शब्दों में परिभाषा बन गई, दानम वैयाव्रत्यम, दान ही वैयाव्रत्ति है। तो कहते किस उद्देश्य से, कहते धर्माय, धर्म के लिए। और किसको, सबको, तपोधनाय, तपोधन तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे महाव्रती मुनिजनों को। और गुण निधि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी गुणों के निधान है उनके लिए। अनपेक्षितोपचारोपक्रिय ग्रहाय विभिन्न, और अनपेक्षितोपचारों कुछ उनसे मिलेगा ऐसी भावना नहीं, प्रतिदान और प्रतिउपकार की भावना से रहित। और विभिन्न, विभिन्न मतलब जो विधि द्रव्य दात्री पात्र जैसी उसकी विधि है उसके अनुसार, ऐसे नहीं कि ले लो, नहीं, विधि पूर्वक देंगे, श्रद्धा पूर्वक देंगे। सामान्य रूप से दान देने में दया का भाव रहता है, और जब धर्म की दृष्टि से दान देते तो वहां पर क्या श्रद्धा का भाव रहता। किसी भी व्यक्ति की मदद कर देते हैं तो किस भाव से करते, दया आती भीतर इसलिए कर देते, भैया भूखा है भोजन खिला दे, भैया गरीब है पैसे दे दे। ये इस सब में कौन सा भाव है, दया का। मुनि महाराज जी भूखे हैं भोजन दे दो, ऐसा दया का भाव है क्या, नहीं, ले ले मेरे से तो मेरा सौभाग्य, श्रद्धा का भाव। तो जितने जिसमें श्रद्धा का भाव है वो सब पारलौकिक दान, और जिसमें करुणा और दया भाव है वो सब लोक में प्रचलित दान। सामान्य रूप से वर्तमान में लोक में प्रचलित दान को ही सेवा माना जाता है, रोटी कपड़ा जुटा देना किसी को वो ही बहुत बड़ी सेवा हो गई। और अपने यहां पर इतना फर्क है, लौकिक दान भी अपने यहां पर है और पारलौकिक दान जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। दया पूर्वक तो दुनिया देती है दान, लेकिन श्रद्धा पूर्वक दान देना वो वैयाव्रत्ति कहलाएगी। तो यहां पर कितनी चीजें आ गई वैयाव्रत में, दान देना वैयाव्रत्ति है लेकिन धर्म की दृष्टि से, अर्थात श्रद्धा पूर्वक। किसको देना, महाव्रती रत्नत्रय को धारण करने वाले, और किस भावना से देना, प्रति उपकार की भावना से नहीं कि मैं देता हूं तो मुझे कुछ मिलेगा, और समस्त विभिन्न अर्थात जैसी विधि है वैसा देना। इतनी चीजें वैयाव्रत्ति में आ गई। फिर और आगे कहते हैं कि इतने ही भी नहीं है, और भी है, व्यापत्ति व्यपनोदा पदयोह संवाहनम च गुण रागात, और सम्यक दर्शन आदि गुण हैं जब भी अपने यहां पर गुण आवे शब्द, तो वहां पर क्या लेना, सम्यक दर्शन आदि गुण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही गुण है। और जब रत्न की बात आवे तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही रत्न है, श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं गुण रागात व्यापत्ति व्यपनुदा, गुण के अनुराग की वजह से किसके लिए देना, नीचे से आएगा संयमी नाम, सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्रीति के कारण जो संयमी है अर्थात देशव्रती है या महाव्रति है उनके लिए व्यापत्ति व्यपनोदा, उनके ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करने के उद्देश्य से पदयो संवाहनम, हाथ पैर इत्यादि दबाने का नाम भी वैयावृत्ति है। ये अलग से दे दिया, दान तो वैयावृत्ति है ही, फिर कह रहे हैं सम्यक दर्शन आदि गुण, उनके पैरों में दर्द हो रहा होगा इसलिए पांव दबा दू तो चले तो है ही नहीं है, अब का दर्द हो रहा हो, ये रोज शाम को और दर्द होने लगा, का पैर दबाने की क्या जरूरत। कहते नहीं, गुण रागात उनके निकट बैठने पर मुझे उनके रत्नत्रय से प्रीति उत्पन्न होगी, और रत्नत्रय से प्रीति की वजह से ही तो दौड़ के चले जा रहे हैं, तो पैर दबाएंगे पांच मिनट दो मिनट तो दबाना रहता है, पांच मिनट दबाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन उतने में मेरे अंदर जो रत्नत्रय की भावना है वो प्रबल हो जाएगी अपने लाभ के लिए। उनको क्या लाभ होने वाला, उनको कोई लाभ नहीं विशेष पैर दबाने से, कहो ज्यादा दबा दो तो तकलीफ और हो जाए है तो, लेकिन उसमें देखो कितनी सावधानी से वो कह रहे कि कोई विपत्ति आ जावे तो पैर इत्यादि दबाना, लेकिन इतना ही नहीं, गुण रागा संयमी नाम, जो संयमी जन है देशव्रति महाव्रति हैं, भैया जाओ, बहुत देर से बैठी थी वो तो हमने कहा आप सुन रही हो तो सुनने दो, बिल्ली उसके नीचे हमने कहा आप जाओ चली गई वो उनके गुणों के अनुराग से, अब उसके समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो फिर चली भैया हाँ संगी पंचेंद्री है, संगी पंचेंद्री है, उसको मन भी है। यावन उपग्रहो अन्य हापी, और अन्य भी जितना जो उपकार है, पैर अकेला दबाना है नहीं, और भी जो हम उनकी सेवा करते हैं, एक जगह लिखा है कि जो संयमी है देशव्रति महाव्रति हैं उनके अनुकूल वातावरण बनाना वास्तव में सेवा तो यही है, उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बनना। महाराज अभी पढ़ रहे हैं हल्ला मत करो, हाँ ठीक बात, ये सेवा हो गई, महाराज अभी स्वाध्याय करवाएंगे चलो, ये सेवा है। ये हम दो बातें कहेंगे किसको कहेंगे बताओ, आपकी इच्छा है सो दो बातें हम कहेंगे, ये आपने इनडायरेक्ट अपना कल्याण तो किया ही, सेवा भी करी, दूसरे के धर्म ध्यान में अपने धर्म ध्यान में निमित्त बने, हमारा भी साथ में धर्म ध्यान हो रहा इस माध्यम से, आपका तो हो ही रहा, परस्पर ये सब जो है अनुकूल वातावरण बनाना ये वैयावृत्ति कहलाएगी। तो कह रहे अन्य जो भी सेवा है वो सब वैयावृत्ति, पैर दबाना, लेकिन क्यों, गुणों के अनुराग से सेवा की जाती है, किसी अन्य भावना से सेवा करने का वैयावृत्ति का उद्देश्य नहीं है। फिर कह रहे हैं नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सुनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। अब इतना तो बता दिया कि भैया दान देना ही वैयावृत्ति है, और भी जो अन्य सेवा है वो करना वो भी वैयावृत्ति है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब दान क्या चीज है, वो किसको देना चाहिए, ये अब डिटेल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, सात गुणों से सहित देने वाले की विशेषता भी होनी चाहिए, जो सात गुण हैं दाता के उनसे युक्त हो, शुद्धेन अर्थात मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि इन तीनों शुद्धियों से युक्त हो। दात्रा अब सूना रंभाना, जो ग्रह के कारी हैं, सूना बोलते हैं अपन, पंच सूना होते ना, सूना मतलब चक्की ओखली बुहारी झारी, ये बाल्टी जो पानी भरने के होते हैं, ये सब पांच सूना कहलाते, इन्हीं से संसार चलता है, आरंभ घर गृहस्थी में जो होता है बस इन्हीं के माध्यम से होता है। तो कह रहे हैं ये पांच सूना कहलाते हैं, ग्रहकारी और खेती आदि से जो रहते हैं उनके लिए आर्या नाम, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त हैं वे आरी कहलाते, उनके लिए नौ पुण्यई अर्थात नौदा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति आहार इत्यादि देना ये दान कहलाता है। चारों प्रकार की चीजें अपन तो आहार दान में ही मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हैं, वैसे औषधि दान में ज्ञान दान में सब में मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि होनी चाहिए। यहाँ यहाँ आपके लिए अनुकूल रहेगा महाराज, यहाँ पधारो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आपके योग्य स्थान है, बैठो आप। ये आवास दान हो गया, इसमें भी उतनी ही शुद्धि जैसे अपन आहार देते उतनी ही। चारों प्रकार के दान में नौदा भक्ति होनी चाहिए और दाता के सात गुण होना चाहिए। अब इसमें बताते हैं कि दाता के सात गुण कौन से हैं, और पंच सूना तो अपन ने गिन ही लिए, ये उखली जिसमें अपन धान वगैरह कूटते हैं, पीसने वाली चक्की और चूल्हा और पानी भरने का जो घड़ा है वो, और प्रमार्जिनी अर्थात बुहारी, ये पांच गृहस्थी में अनिवार्य हैं। इसमें से एक की भी कमी हो जावे तो गड़बड़ हो जाएगी, गृहस्थी ने चलेगी, देख लो आप हैं। अब भले ही आपकी कूटने वाली मिक्सी आ गई, पीसने वाली मिक्सी आ गई, लेकिन है तो कूटने पीसने वाली कोई चीज, चूल्हे की जगह पर अब गैस का चूल्हा आ गया, ये अलग बात है, पर है तो बुहारी के लिए अब मशीन आ गई, तो सब उसमें मशीन से चालू करते हैं, सब साफ होकर के वापस, पर हैं तो वही सब, उनका रूप बदल गया, पर पांच ये चीजें गृहस्थी में, जिन्होंने ये सब छोड़ दिया, आरंभ और परिग्रह छोड़ दिया है, उनके लिए दान देना, ये हो गई किसे देना उसकी विशेषता। ठीक है, दान में इतनी चीजें ध्यान में रखने की हैं, किसको दान देना, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त हैं और जिन्होंने आरंभ परिग्रह छोड़ दिया है उनको देना, तो कैसे भाव से देना, कहते सात गुण हैं दाता के, वे सात गुण से युक्त और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि ये अपन बोलते ही हैं, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु, ये पांच प्रकार की शुद्धि हो गई, और चार और इसमें जोड़ दो तो नौदा भक्ति, नव पुण्यई प्रतिपत्ति, नौदा भक्ति पूर्वक देना, नौदा भक्ति में प्रतिग्रहण, पड़गाहन जिसको बोलते हैं, बिगड़ करके वो पड़गाहना बन गया है, वो है एक्चुअली प्रतिग्रहण, निकट से ग्रहण करना, वो स्वामिन वहां वहां कहां जा रहे हैं आप, अत्र अत्र यहां यहां, और फिर जैसे आने लगे तिष्ट तिष्ट, तो अपन उसको तिष्ट की जगह पर प्लुत कर देते हैं, तिष्टो तिष्टो, हाँ वो दीर्घ हो गया उसका, हाँ अत्रो, अब अत्र अत्र कहेंगे तो कैसे बनेगा, तो उसमें मैंने एक आ की मात्रा नहीं लगती, उसमें ये प्लुत कहलाता, उसमें देर तक बड़ी आ की मात्रा लगाएंगे तो कहेंगे अत्रो अत्रो या कि तिष्ठो तिष्ठो, ये सही शब्द हैं, गलत नहीं है, भो स्वामिन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ये कहना आसान नहीं है, इसलिए भो स्वामिन अब आमंत्रणी भाषा है ये बुलाने के लिए, अत्रो 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 मतलब पधारो आओ आओ, और तिष्ठो ठहरो ठहरो, इस तरह से ये कहलाता प्रतिग्रहण, अत्यंत निकट से, और तीन प्रतीक्षणा देते हैं मन से वचन से शरीर से, मैं सबसे आपको स्वीकार करता हूं पूरी श्रद्धा के साथ, फिर बाद में जाकर के उच्च स्थान पर बिठाना, ये दूसरी भक्ति, पहली भक्ति प्रतिग्रहण, दूसरा उच्च स्थान देना, ये दूसरी भक्ति, फिर अब मैं क्या करूं, आप मेरे घर में पधारे, मैं तो चरण माथे पर रख लूं, लेकिन ये तो संभव नहीं है, लाओ आप जरा हम पैर धुला करके ही माथे पर लगा लें, तो फिर उसके बाद पाद प्रक्षालन, और फिर आप गुणगान करेंगे, गुणगान करने के लिए क्या है, पूजा, तो पूजा कर ली, ये चौथी भक्ति हो गई, फिर बाद में भोजन सामग्री के बारे में विश्वास दिलाना पड़ेगा, कैसे विश्वास कर लें आपका, तो फिर विश्वास दिलाते कि महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हमने जो बनाया है, हमारी हमारी जितनी सामर्थ्य उतनी शुद्धि हम बोले, और आहार जल शुद्ध है ये, और फिर नमोस्तु, ये नौवें नंबर की भक्ति है, ये अपन भूल ही जाते हैं, उसमें फौरन अपन कुछ और बोलने लगते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, भोजन करो स्वामी, अरे वाह आपको यहां पर अच्छा लग रहा है, ठीक है वहां पर बैठ के जाकर उसको, वहां अच्छी जगह है, तो कितनी चीजें हो गई, प्रतिग्रहण, उच्च स्थान देना, और पाद प्रक्षालन, पूजन, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल की शुद्धि, और नमोस्तु, ये नौ चीजें हो गई, ये नौ प्रकार की भक्ति जो चौके में उपस्थित है उसको ये नौ ही करना चाहिए, और जो चौके में बाद में बाहर से आया उसके लिए कितनी, पांच। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, नमोस्तु स्वामी, ये मुख्य है। लेकिन अपन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अंजलि छोड़ के, मुद्रा बांध के, दुनिया बांध के, पता नहीं, अपने तो आज तक समझ में नहीं आया, अपन तो सुन लेते हैं, सुनते रहते, बाकी उसमें कुछ है नहीं, कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि मुद्रा छोड़ो के, अंजलि बांधो के, खड़े हो के, चबा चबा के खाओ, सब ये इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। तो हम तो सोचते हैं कि सब देव फिर सब बोलो उसमें, अगर बोल रही है तो नहीं, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है, उसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वो सामिन नमोस्तु। आप जैसे आहार ग्रहण करते हो वैसे करें, वो आपकी प्रक्रिया, हम उसमें कौन होते हैं आपको डायरेक्शन देने वाले। ये नौ प्रकार की, इससे युक्त होना चाहिए। दाता के सात गुण कौन से हैं वो जरा सा अपन देख लें। दाता के सात गुणों में देखा है श्रद्धा और भक्ति, फिर शक्ति, अलुब्धता, विज्ञान, दया और अमात्सर्य। ये दाता के सात गुण हैं। अलग अलग तीन आचार्यों ने अलग अलग ढंग से बताए हैं, अपन एक के हिसाब से पढ़ लें, वो लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। देखो श्रद्धा किसे कहते, जब तक मुनि महाराज जी हमारे घर में हैं तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी श्रद्धा है। नहीं तो आओ पाओने और हम चले दूसरी अन्यत्र चले गए, तो पाओने तो मेहमान तो घर में आए और अपन उनको बिठाल करके अन्यत्र चले गए। नहीं, अगर एक मुनि महाराज आ जावे और दूसरे के आने की आवाज आवे तो इनसे पूछ करके कि स्वामी मैं अन्य महाराज को पड़गाने जाऊं कि नहीं, आप इशारा कर दें तो मैं चले जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे बिल्कुल लोलुपता नहीं है इस बात की। एक छोड़ दूजी को धावे तो दो ही से गए। आप अगर बाहर निकल गए बिना पूछे तो इनका फर्ज है कि ये चुपचाप निकल जाएं, वे आएंगे अब ठीक, ये तो निकल ही जाएंगे अगर आपने परमिशन नहीं। कई बार ऐसा होता है लोग कह ले, आधे लोग लो आ जाओ भीतर, आधे तो खड़े रहो और पड़गा लियो महाराज को। लेकिन ये दोष लग गया, श्रद्धा नहीं रही। श्रद्धा से दस लोगों ने पड़गाया तो वे दसों ही अंदर जाएंगे और फिर बिठाल करके। अब अगर किसी के आने की